नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की इसराइल यात्रा पर तेल अवीव पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इसराइल दौरे पर आज तेल अवीव आ पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर इसराइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद उपस्थित होकर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरे ही इसराइल से कई गणमान्य लोग भी हवाई अड्डे पर उपस्थित रहे। हवाई अड्डे पर स्वागत विधि के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ऐसा कहा जाता है कि ये निजी बातचीत में द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत हुई। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री तेल अवीव से जेरूसलम रवाना होने वाले हैं। करीब 1 घंटे की दूरी पर आए यरूशलेम में इसराइल की पार्लियामेंट कनेसेट को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के 2 दिन के इस दौरे का प्रमुख आकर्षण इसराइल की संसद को संबोधन है। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो इसराइल की संसद को संबोधित करेंगे। यहाँ के 120 सांसद और पूरा ही इसराइल एक तरह से देखें तो प्रधानमंत्री के संबोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री का यहाँ एक टेक एग्जीबिशन में जाने का भी कार्यक्रम है। धीरज काकड़िया, आकाशवाणी समाचार, जेरूसलम।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में 4 दिन के राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ नागरिक देश को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये आरोग्य मेला आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगा रही है और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही किसान पहचान पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लगभग 1,92,000 करोड़ रूपए वितरित किए जा चुके हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री मांडविया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और कौशल विकास के अवसर प्राप्त हों। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि जनहित से समझौता करना कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है।
राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ऊंची राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। एक प्रकार से फॉरेन पावर्स के पपेट के रूप में, ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस एंड एंटी इंडिया गवर्नमेंट। उनको सिर्फ लिखा पढ़ा के जिसको प्रश्न दिया हो उसके अलावा वो कोई प्रश्न भी नहीं ले सकते। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तैनात किए जा रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के जवानों को आवंटित वाहनों में GPS ट्रैकर लगाने का निर्णय लिया है। आयोग ने पिछले चुनावों में CAPF कर्मियों की अप्रभावी तैनाती को लेकर मिली शिकायतों के बाद ये कदम उठाया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ आज चेन्नई पहुंचे। आयोग की ये दल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगी। दल जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करेगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज पुंछ जिले के कसबलारी इलाके में तलाशी अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए। सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान IED, चीन निर्मित ग्रेनेड, गोलियों और पिस्तौल बरामद किया गया। कोलंबो में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में आज शाम 7 बजे न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। वहीं श्रीलंका को पहले मुकाबले में इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड ने कल पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।